الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال ما علمي ما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لتشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن إلا نذير مبين. حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ایمان اور دین صحیح دین اسلام تو شروع سے حضرت آدم علیہ السلام ایرانی سے اسلام ہے دین ایک ہی ہے اس میں جزی طور پر حالات اور قوموں کے لحاظ سے کچھ چیزیں بڑی گھٹتی رہی ہیں لیکن بنیادی طور پر یہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا رہا ہے اور آدم علیہ السلام اس کو آسمان سے لے کر آئے تھے ظاہر ہے اللہ نے ان کو زمین میں اتارا اور ان کو یہ جانتے تھے وہ زمین اتارے جا رہے ہیں اس غلطی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی شیطان کے اثر سے اور ان کو بتا دیا گیا کہ اب تمہیں امتحان دینا ہے یوں تو تم جنت میں تھے اور شاید جنت میں رہتے ہیں ہمیشہ لیکن تم نے ایک ایسی بات کی کہ جو جنت کے لائق نہیں تھی اور شیطان کے کہنے سے کر لی تو اب یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی غلطی سے اپنے کو بچائیں گے انہی کو جنت میں اب جگہ ملے گی اور جو اپنے کو اس غلطی سے ایسی غلطی سے بچائیں گے نہیں تو ان کو جنت میں آنے کی ابھی درخت نہیں اور فوری طور پر تو تم کو بھی جنت سے باہر جانا ہے تاکہ تم کو یہ احساس رہے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اور تم اپنی اولاد کو بھی اس بات بتا دو کہ دیکھو اس غلطی کی وجہ سے ہم کو زمین پہ آنا پڑا وہ اسپش جگہ پر ہم جنت میں تھے بہت اعلیٰ مقام جنت کا ہے وہاں ہم تھے اسے ہمیں محروم ہونا پڑا غلطی کی وجہ سے اس لیے تم بھی ہوشیار رہو ایسی غلطی نہ کرو کہ تمہیں سزا ملے. اللہ تعالیٰ نے زمین اتار دیا اور کہا کہ تمہیں ہم عارضی زندگی دیتے ہیں تمہاری اولاد کو یہ عارضی زندگی ملے گی ایک مدت تک اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ واقعی اپنے کو جنت کا اہل ثابت کرتے ہیں نہیں کرتے. جنت تمہارے لیے ہے لیکن کب اس شرط کے ساتھ کہ تم جنت کے لائق ثابت بھی ہو. تم کو جنت رکھا گیا تھا और तुमसे कह दिया गया था देखो अगर ये भला बात करोगे तो तुम्हारे ही नुकसान दे, तुमने कर दिया गलती से, तुमने तौबा कर ली, तौबा माफ, गलती माफ कर दी गई। लेकिन अब क्योंकि इसका इम्कान वाकई है कि गलती दोबारा हो सके, इसलिए अब तुम्हें साबित करना पड़ेगा। लिहाजा नीचे उतार दिया गया और शैतान को तो पहले ही से भगा दिया गया था, वहां से ऊपर से नीचे गिरा दिया गया था। उसकी हरकत की वजह से शैतान ने इस बात की इजाजत ले ली कि हम इनको पनपने नहीं देंगे, हमें इसकी आप इजाजत दें कि हम पर इसकी रोक ना हो। अल्लाह ताला का ठीक है, ये तो और अच्छी बात कि इन लोगों के लिए इनकी इनका सही इम्तहान हो जाएगा, नहीं शैतान बहकाएगा। अगर उसके बाद ये साबिर कदम रहते हैं, नहीं बहकते, तो वाकई जन्नत में चले, जन्नत कराए। लेकिन अगर ये ऐसे कमज़ोर हैं कि कोई बहकाने से आ जाएं, तो फिर ये लायक नहीं जन्नत में आने के। ये इम्तहान इस तरीके से इम्तहान हो जाएगा और अच्छा है। अल्लाह ताला ने याद दे दी शैतान को कि तुम इंसान को बहका सकते हो, फरमा दिया कि जो सही लोग हैं वो बहकाने में नहीं आएंगे। और खुद शैतान ने भी कहा कि हाँ जो सही लोग हैं तुम्हारे मुकाबले में नहीं आएंगे, लेकिन कमजोर लोग भी होंगे। चुनाचे आदम अलैहि सलाम ने राहिर की औलाद 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 जैसे होता है कि खानदान में दीन है तो दीन चलता है, चला जब तक चल सका। अब उसमें इंसान के साथ उसका नफ्स भी है और शैतान भी है, वो काम होता रहा। उनकी औलाद जो आदम की औलाद थी, आज की जो औलाद आदम की, दोनों में कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क थोड़ी होगा। खसूसियात और मिजाज इन सब चीज़ें मुश्तरक हैं। जो आज मिजाज है इंसान का और जो इंसान के जो तबीयत है, इसी तरह की तबीयत उस सब भी थी। और आदम की औलाद है, देखिए सब एक ही नस्ल है, एक ही खसूसियात हैं, तो उनमें ये बातें होती रहीं। और कसल का वाकया भी पेश आ गया हाबिल काबिल का, तो ये गुनाह आदमी से सरदर्द हो जाते हैं, गफलत की वजह से सरदर्द होते हैं, और बाज़ वक्त तो शोखी की वजह से तमर्रुक पैदा होता है। आदमी गुरूर में और शान दिखाने के लिए बात काम गलत करता है, अपनी इज्जत के लिए, झूठी इज्जत के लिए बाजार आदमी गुनाह करता है। गुनाह करने के कई असबाब होते हैं, सिर्फ शैतान का बहकाना ही नहीं, बल्कि तबीयत में एक शान का जो शौक होता है और अपनी ख्वाहिश का जो दबाव होता है, उसमें आदमी बहुत से गुनाह करता है, समझते हुए गुनाह करता है कि गुनाह है, और अफसोस को अंदर दिल में होता है कि हमें गुनाह करना पड़ रहा है, लेकिन करता है। और यही चीज़ उसके लिए इम्तहान का बायस होती है। ये सिलसिला चलता रहा और तदरीर आदम की औलाद में बुतपरस्ती आ गई। बुतपरस्ती इस तरीके से शुरू हुई कि जो नेक लोग थे उनका एहतराम करने लगे, उनके इंतकाल के बाद उनका एहतराम कैसे करें वो मौजूद नहीं है, तो उनकी कोई अलामत इख्तियार कर ली, उसका एहतराम करने लगे कि गोया कि हम उनका एहतराम कर रहे हैं, और फिर मुजस्मा बना लिया, उसी की शक्ल का बना लिया या वही बना लिया। और ये बात बढ़ते बढ़ते तो इतनी तरीक आगे चली गई थी अरबों में सरसी आने के बाद वो हस्ती बहुत मुतनव कस्म की बुतरस्तियों में होने लगी थी। वो ये करते थे, सफर में जाते थे तो काबे का मसला एक आध पत्थर ले गए, और रास्ते में जब जरूरत पड़ी, जी चाहा उसकी उसको पूछ लिया, मदद कर ली उसकी, क्यों लिया, और सामने झुक गए। और बात इतनी बढ़ी कि उस जैसी कोई चीज़ मिल जाए तो उसको भी वो माबूद बना लेते थे। यहाँ तक है कि आटा ले गए वो रोटी पकाने के लिए, अब वो उसका वो बनाया, बनाकर एक रोटी के टुकड़ा एक बनाया, और उसको समझ कर तसव्वुर कर लिया कि ये गोया के फला के एहतराम में, अल्लाह के एहतराम में हम इसकी इबादत कर, उसको पूज लिया, और फिर रोटी खा भी ली, वही रोटी खा भी ली। इससे बहुत बात यानी बहुत बेटों के अंदाज से शिर्क होने लगा, शिर्क आम हो गया। लेकिन तीन चार बुत उनके यहाँ अहम थे जो चले आ रहे थे, तारीखी तौर पर उनका ख्याल था, ये लात था, उज्जा था, मनात था, हुबल था, और ये उनके मशहूर बुत थे जिनकी वो इबादत करते थे। इनको अहम यानी अहम बुजुर्ग या अहम इंसान समझते थे। इंसान क्या यानी जिससे तस्वूर आदमी को हो जाता है कि फलां ऐसे बुजुर्ग हैं कि फरिश्तों से भी ज़्यादा ऊँचे हैं, और फिर आखिर में अल्लाह तक पहुँचा देता है आदमी इंसान को। आप देखते हैं कि दुनिया में जो तकदीस का जो रवाज है, कब्रों की तकदीस और ऐसी चीज़ों की तकदीस के जो बिल्कुल बुतपरस्ती की तरह है होती है। इंसान के अंदर जो एक वो होता है अकीदत का जज्बा और या वहम, अकीदत का जज्बा जो है वो एहतराम में आदमी को बुतपरस्ती और शिर्क तक पहुँचा देता है, और जो आदमी को वहम होता है वो खतरे के ख्याल से कि फला हमको नुकसान पहुंचाएगा। जैसे बाद बनाए हुए खुदा ऐसे हैं जिनसे इंसान डरता है और उनकी इबादत इसलिए करता है कि ये हमको नुकसान न पहुंचाए। हद ये है कि एक फिरका है शाम व इराक में जो यजीदी लफ्ज का सही नहीं है, वो यजदी है, यजदान से बनाया उन्होंने, तो वो शैतान की भी इबादत करते हैं। कहते हैं शैतान को भी राजी रखने की ज़रूरत है ताकि हमको बहकाए नहीं, हमको परेशान न करें। एक तस्वूर उनका पैदा हो गया तो उसके भी बुत बना रखे हैं शैतान के, उसकी इबादत करते हैं और शैतान की जो पसंदीदा चीज़ें हैं उसका एहतराम करते हैं, बस अंधेरे को पसंद करते हैं, गंदगी को पसंद करते हैं ताकि शैतान खुश रहे। शैतान खुश रखना उनके यहाँ ये शाम वैराक में है। तो ये लड़का जिसका नाम आपने सुना होगा यजीदी के नाम से उनका नाम आता है, जाहिर है कि वो बदतरीन मुशरिक हैं, क्या वो शैतान को मामूल समझने लगे। और आप देखें दूसरे बाद मज़ाहिब में, शिर्क के मज़ाहिब में यह है कि बाद खुदा ऐसे हैं उनके कि जिनसे डर की वजह से और उनके नुकसान से बचने के लिए उनकी इबादत होती है, और बाद ऐसे हैं कि जिनसे नफ़ा हासिल होने के लिए इबादत होती है। बहरहाल ये बदअली जो है आदम की औलाद में सिलसिला शुरू हो गया और बढ़ता गया, और जब नाफरमानी और इस तरह की चीज़ें बहुत बढ़ जाती थी तो अल्लाह ताला उस पर नबी भेजता था। नबी हकीकत में दाई होता था, कुछ दीन की तरफ बुलाता था, कोई वो फरिश्ता नहीं होता था, इंसान ही होता था, मगर ये कि उसके सिवर ये काम अल्लाह ताला करता था और उसमें अल्लाह ताला ऐसी खसूसियात पैदा फरमा देता था कि जो इस काम के लिए बहुत मुआविन होती हैं। चुनाव हतनू अलैहिस्सलाम का दौर जो था उस वक्त तक बहुत ऐसी शिर्क की बुराइयाँ आ गई थी कि अल्लाह ताला ने उसके लिए नबी मुकर्रर किया। और भी नबी आए होंगे, नबी उस ज़माने में कसरत से आते थे, नबियों की तादाद बहुत होती, जैसे आजकल दाइयों की तादाद होती है। अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ कि हुज़ूर सल्लम पर चूँकि रिसालत और नबूवत ख़त्म हो गई तो नबी तो नहीं आएगा, लेकिन नबी का काम जारी रहेगा। उसको वो लोग करेंगे जो नबी नहीं हैं लेकिन नबी के बिल्कुल नक्श कदम पर चलेंगे। तो पहले नबी होते थे तो एक एक बस्ती में बाद कई कई नबी आ जाते थे, उनके हल्के हो जाते थे, काम करने का हल्का होता था कि इसमें काम करेंगे। तो नबी मुतादे नहीं आए होंगे, इसलिए कि ये आयत से भी इसका पता चलता है कि मुतादिन नबी आए, उनमें सिलसिला समझाने का रहा, नबियों ने समझाया, और आखिर में बड़े नबी की हैसियत से नूह अलैहिस्सलाम आए, वो बड़े अहम नबी की हैसियत से, और उन्होंने काम शुरू किया और उनको समझाया। तो क्योंकि वो आम कोई ऊँची सतह के यानी वो लीडर सतह के नहीं थे, शरीफ और अच्छे इंसान थे, तो उसमें बाद लोग बड़े दुनियावी एतबार से बड़े अहमियत के थे कौम नू में। वो लोग कहते थे कि आपने ऐसे लोगों को, मामूली लोगों को जमा कर रखा है, इनके मौजूदगी में हम नहीं आ सकते आपके साथ, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। होता है ना ऊंच नीच का मसला, तो ऊंच नीच का मसला वो उठाया, पहले ये आप जिन लोगों को आपने मुसलमान दीन में दाखिल किया है हम इनके साथ नहीं बैठ सकते, ये घटिया लोग हैं, देखो क्या पेशा करते हैं, मामूली पेशे करते हैं, हम इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। और इनको आप हटा दें तो हम फिर आपकी बात सुनेंगे और बात करेंगे, उनके भैया तो हम नहीं करेंगे। जो शब्द जिसने दीन कबूल कर लिया है, जो अच्छे अच्छे उसके हालत अच्छी हो गई है, तो उसको हम भगा दें, कैसे भगा दें, किस दुनिया तो उनको हम यहाँ से निकाल दें, किसी बात तरीका नहीं है। ये तो जब उन्होंने दीन को कबूल किया है हम इनको कबूल करते हैं, और तुम जो गलत काम कर रहे हो हम तो उसको मना कर रहे हैं कि तुम गलत काम करना बंद कर दो, तुम्हें अपने अपने हलके में दाखिल करना, इस तरह खानदान दाखिल करना समझिए, तुम ये बुरी आदतें अपनी छोड़ दो। तो वो कहने लगे नहीं तुम बेकार बातें करते हो, हम अपने बाप जो बात चली आ रही है ये हमने अपने बड़ों से सीखा है, हम बड़ों के रास्ते पर रहेंगे, तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कज़बत क़ौम नूहिन लिल्मुरसलीन, के नूह की कौम ने अपने नबियों के झुटलाया, उनकी बात को नहीं माना, बहुत से नबी आए होंगे, इरकाल हूँ अख नूह, और फिर जब नूह अलैहिस्सलाम ने जो उनके भाई होते थे उनके खानदान के थे उन्होंने कहा अल्लाह का तकून, क्या तुम लोग डरते नहीं हो, एहतियात नहीं करते, तुम ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो जिस पर उन पर आजाब आ सकता है, अपने को संभालो, तकवा इख्तियार करो। तकवे का मतलब ये है कि बचाओ, अपने को बचाओ इख्तियार करो, तुमको हर से गुजर रहे हो, इस पर जो पकड़ होती आजाब आता है, तो डरते नहीं हो तुम इस बात से, इन्हीं लकूम रसूल अमीन, मैं अल्लाह का पैगंबर बनकर तुम्हारे सामने आया हूँ, और मैं बहुत अमानतदारी के साथ इस काम कर रहा हूँ, ये मैं कोई किसी खुदगर्दी के बिना पर ये नहीं कह रहा हूँ, ये अपने अपने नफे के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जो तुमको मैं समझा रहा हूँ इसको ये ना समझो कि मैं किसी मादी गरज से किसी फायदे के लिए तुमको ये तुमसे कह रहा हूँ, ये तुम्हारी खैरखाही में तुम्हारे फायदे के लिए हम कह रहे हैं। तुम्हें डरना चाहिए कि तुम ऐसे गुनाहों खिला हो के जिस पर तुम पर मुसीबत आ सकती है, और हम बहुत इखलास के साथ तुमसे कह रहे हैं, अमानतदारी के साथ कह रहे हैं, ये हम किसी गरज या किसी अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं। फत्तकुल्लाह वाकिउन, लिहाजा तुम डरो अल्लाह ताला से की नाफरमानी से, और मेरी बात मान लो, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारा फायदा है। हमारा असल तुम्हारा मिला जिर, और मैं तुमसे कोई मुआवजा इसका नहीं चाहता, मैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, तुमको वक्त अपना सर्व करता हूँ, तुमको समझाता हूँ, अपना वक्त लगाता हूँ, ये ना समझो कि मैं किसी मुआवजे पे ये काम कर रहा हूँ। जाहिर है बाकी हालात आदमी कैसे होते हैं कि कोई काम आदमी मेहनत कर रहा है तो ये समझा जाता है कि इसके पीछे उसको मुआवजा मिलता होगा, अगर मुआवजे के लिए मेहनत क्यों करेगा, कोई भी काम आदमी कर रहा है तो उसमें कोई नफा होता है। और सच्ची बात ये बात ऐसी है कि अगर गौर करें तो इंसान को कोई काम भी ऐसा नहीं है जो करता है उसमें उसको फायदा पैसे नजर चलेगा, कहीं जाएगा, कहीं आएगा, किसी से बात करेगा, अखलाक से बात करेगा, या किसी अंदाज उस सब में आप देखिए कोशिश फायदा को होता है। हम अखलाक बरतते हैं दूसरे के साथ क्यों, कि दूसरे से हमें अखलाक मतलूब होता है, तो वो हमारे साथ अखलाक बरतेगा, हम दूसरे की खातिर करते हैं इसलिए कि दूसरा हमारी खातिर करेगा जब मौका मिलेगा, इसके पीछे गरज जरूर होती है, बहुत कम ऐसा होता है, वो मरतबा बहुत ऊंचा मरतबा है कि जिसमें आदमी अपनी गरज से न कर रहा हो बल्कि किसी ऊंचे मकसद से कर रहा हो, बहुत मुश्किल है। आदमी हर चीज़ में आदमी के पैसेंजर अंदर चीज दबी हुई होती है कि हमसे अगर हम ऐसा न करेंगे तो हमें ये नुकसान होगा, और ऐसा करेंगे तो इससे हमें फ़ायदा हो जाएगा, किसी से अखलाक से बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसे इसलिए कि उसको वास्ता जब पड़ेगा तो वो अखलाक से बात करेगा, वरना अखलाक से बात नहीं करेगा। तो ये इंसान का मिजाज है और यही मिजाज इसको गुनाह की तरफ ले जाता है, इसलिए तवज्जो दिलाई गई है। तो वो ये सर वो नबी को जाहिर होने का, ये क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये क्यों पीछे लगे हुए हैं हमारे, इनको किसी ने लगाया है इस बात पर, किसी ने इनको इस काम के लिए लगाया है। जाहिर है वो कोई मुआवजा मिलता होगा इनको, तो वो उसकी तरदीद करते हैं। उमा असल मिलाजिर, मैं तुमसे इसमें किसी मुआवजे का सवाल नहीं करता हूँ, इल्ला रब्बिल आलमीन, मुझे तो मुआवजा जो मिलेगा तो रब्बिल आलमीन की तरफ से मिलेगा, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह ही से मुझे मुआवजा मिलेगा, मैं और किसी इंसान से या तुमसे मुआवजा नहीं चाहता, मैं इखलास से काम कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ। पर तो खुदा लिहाजा डरो तुम, अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। अब इन्होंने कई मतलब इस बात कर चौन गलत देखे कई जगह आया, डरो, डरने का मतलब ये है कि तुम जो कर रहे हो इसके नतायज से डरो, ये तुम ऐसी हरकत कर रहे हो कि जिससे तुम मुसीबत पड़ सकते हो। आदमी गलत काम से उस वक्त तो बचता है कि जब उसको मालूम हो कि गलत काम का नतीजा उसके लिए खराब हो। और मोमिन को ही बताया गया है कि तुम्हारी बदामालियों का नतीजा खराब आखिरत में होगा, लिहाजा आखिरत पर यकीन जरूरी है। अगर आखिरत पर आदमी को यकीन नहीं है तो फिर वो इसकी परवाह नहीं करेगा, गुनाह की परवाह नहीं करेगा, देखा जाएगा। इसीलिए आखिरत यकीन पर जोर दिया गया है और उसको अहम करार दिया गया है। बिलग़ैब तो कहा कि मेरी बात मानो, बार बार कह रहे हैं कि मेरी बात मानो और अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की पकड़ से डरो। तुम जो हरकतें कर रहे हो इस पर मुसीबत आ सकती है, अजाब आ सकता है। ये कहते रहे बेचारे और 950 साल रहे वो अपनी कौम के साथ, लंबी उम्र पाई। तो जाहिर है कि 950 साल जब मौका मिलता होगा वो कैसे होंगे, तो लोग कहते होंगे ये कैसे आदमी, कोई काम इनका है ही नहीं, इसी में लगे हुए हैं, तो जरूर इनको इसमें नफा कुछ भागा होगा, उनको मुआवजा मिलता होगा। फालू अनुमने लगा तबाह कर वर्ष, अब उन्होंने दूसरी बात कही, कहा ठीक है, यानी हो सकता है तुम्हारे पास, लेकिन हम क्या हम तुम पर ईमान ले आए इस हालत में कि तुम्हारे पीछे पीछे ये कमीने लोग, घटिया लोग हैं, तुम्हारे साथ चलने वाले, तुम्हारे पीछे रहने वाले ये घटिया और कमीने लोग हैं, यानी कमीने पैसे अख्तियार करते हैं, वो घटिया बैठे, कमीने के मतलब नहीं घटिया पैसे, तो ये इनकी इनकी मौजूदगी में हम पर नहीं आ सकते, मैं तो तुम हमको बुलाते हम नहीं आएंगे। सारा वहाँ इलमी वहाँ कानून मानून कहा, मेरा मुझे इन बातें कोई इल्म नहीं, मुझे मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि जानूँ कि कौन क्या पैसा करता है, कौन क्या काम करता है, मैं तो देखता हूँ अच्छे बुरे फर्क देखता हूँ, अच्छे अमाल कर रहा है अच्छा है, बुरे अमाल कर रहा है तो बुरा है। अब पेशा वो जाहिर है अपने माश के लिए वो कोई पेशा कर सकता है, तो उसको तुमने उसके दर्जे बना रखे हैं। तो उनका वहाँ इल्म कानून, ये जो कुछ अमल करते हैं, जो काम करते हैं, उसका मुझे इल्म नहीं है, मुझे उससे गोया ताल्लुक नहीं है। इन हिसाबों इल्ला अला रब्बी लौ तशुरून, इनका इनका हिसाब किताब इस सिलसिले में अल्लाह ताला के यहाँ होगा, मेरे रब के यहाँ होगा। ये चीज अल्लाह ताला से ताल्लुक रखती है, ये पेशा क्या करते हैं अल्लाह, इसका जवाब अल्लाह के यहाँ देंगे। हम तो क्या मतलब इसका लौ तशुरून, अगर तुम इसका एहसास कर सकते हो, इस बात को समझ सकते हो, समझ लो कि ये खाना हमारा नहीं है, ये खाना अल्लाह ताला से ताल्लुक रखता है कि ये क्या पेशा करते हैं। हम तो ये देखते हैं कि इनका अमल अच्छा है तो हम अच्छा थे। कुमान बेताजी ममी, और दूसरी बात यह है कि मैं ईमान लाने वालों को भगा नहीं सकता, मैं तो ईमान वालों के ईमान के लिए बुलाता हूँ, और जो ईमान ले आया उसको हम भगा दें, ये कैसे हो सकता है, इनको हम ये काम नहीं कर सकते कि इनको भगा दें। इन्होंने इल्ला नज़ीर मुबीन, मेरा तो काम ये है कि मैं डराने वाला काम कर रहा हूँ, वो खुले तरीके से तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी हालत ऐसी खराब हो गई है बदामारियों की और नाफरमानियों की, कि बहुत ये डरने की चीज और खजा है, तुम पर अजाब आ सकता है। मैं कह रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला की तरफ से तुमको बता रहा हूँ। مجھے معلوم ہے کہ ایسی حرکتوں پر عذاب آ سکتا ہے. قالوا لئن لم تنتهي عن هو تكون من المظلومين. انہوں نے کہا کہ بس ہو گیا, بار بار تمہارے پیچھے پڑے ہو, ہم تم کو مار کے بھگا دیں گے, پتھروں سے ماریں گے تم کو, بہت تمہارے پیچھے مت لڑو, پتھروں سے ماریں گے تم کو اور ختم کر دیں گے. جب اس حد تک بات پہنچ گئی, میں تجلی پہنچی ایک دم سے تو پہنچی نہیں, برسوں سمجھایا ہوگا, میں نے کہہ گیا تو آخر میں وہ کہنے لگا ہم سے آپ مخاطب نہ, ہم ماریں گے تم کو پتھروں سے ماریں گے. تب حضرت علیہ السلام نے کہا اے پروردگار, قال رب ان قومی کذبوا فاقطع بینی وبینہم قطعا ونجنی ومن معی من المؤمنین. اے پروردگار, میری قوم نے مجھ کو تو بالکل جھٹلا دیا, میری بات سننے کے لیے تیار نہیں, تو میرے ان کے درمیان میں اب فیصلہ فرما دیا, کھول دے, میں جو رکاوٹ ہے دور فرما دے, میرے ان کے درمیان جو ہے ان کا فیصلہ فرما دے, ایسا فیصلہ فرما دے بالکل, یعنی اب ان کا فیصلہ ہو جانا چاہیے اور میرا ان کا واسطہ ختم. لے کے ظاہر ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بولو گے تو پتھر سے ماریں گے تم کو, تو آخر پتھر سے ماریں گے ہم کو, مار ڈالیں گے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اب تو بھی فیصلہ فرما دے کہ میرا کام گویا کہ اب ان سے ختم, اب میں ان میں کام ہی نہیں کر سکتا. جب اس حد تک بات پہنچ جائے, وہ نجنی و مایا میرے مومنین, اور مجھ کو بھی نجات دے دے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی نجات دے دے, ورنہ یہ تو اب مار پیٹ اور قتل گاری ہوگی. اس لیے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں اور اب تو یہ ہماری جان کے بھوکے ہو گئے. پان جائیں ماہو پھر بھول کے مشہور اگر ہم آپ ہم لوگوں کو نجات دے دی, ان کو نجات دے دی, اس مصیبت سے ان کو ہم نجات دے دی, اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان والے تھے ان کو بھی نجات دے دی, اور کیسے دی, کشتی میں بٹھا کر, کشتی میں بھر کر ان کو سیلاب سے بچا دیا. اب یہاں مختصر فرمایا اللہ تعالیٰ نے, دوسری جگہ باقاعدہ اس کی تفصیل ہے کہ کس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے, اچھا تم یہ کرو کشتی بناؤ, بڑی کشتی بناؤ جس میں تم سب بیٹھ سکتے ہو, تمہارے اتنے آدمی ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ غالباً کا نجار کا پیشہ بھی تھا, یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے, تو انہوں نے کشتی بناؤ. اب وہ کشتی جب بنا رہے تھے تو لوگ استحجا کرتے تھے, ان کے قوم میں لوگ کیا بنا رہے ہو, کہاں پہاڑ پہ چلے گی کشتی, کیا ہوگا ان کا, اور مذاق اڑاتے تھے ان کا, اڑا لو مذاق. لیکن ایک دن آئے گا کہ تم پر مذاق, تمہارا مذاق لوگ اڑائیں گے کہ کیسے احمق تھے, اتنا سمجھانے کے بعد بھی انہوں نے بات نہیں مانی اور آخر میں غرق کر دیے گئے, تو ہاں مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں ہے کہ وہ گزرتے تھے مذاق اڑاتے تھے, کشتی بنا رہے ہو, ہاں کہاں چلے گی یہ, ٹھیک ہے بناتے رہے. اور جب کشتی بن گئی تب اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا اور ایک جگہ تنور سے وہ دھارا پانی کا نکلنا شروع ہوا, تو سیلاب وہ بڑھتے بڑھتے سیلاب بن گیا, اور جب بارش شروع ہو گئی پر اتنا پانی برسا کہ سب سارے مکانات ڈوب گئے, ساری آبادی اس میں ڈوب گئی. اب لوگ اس میں نکل کر پانی کے اندر ہاتھ پیر مار رہے ہیں, بچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس میں اتنو کا بیٹا بھی تھا نافرمان, اور دوسری جگہ سے معلوم ہے اتنو کی بیوی بھی نافرمان تھی, تو ان کا بیٹا نافرمان تھا, وہ دور ہاتھ پیر مارتا ہوا دکھائی دیا. اتنو نے کہا آؤ بیٹے کشتی پہ آ جاؤ, انہیں نہیں ہم کہا وہاں پہ چڑھ لیں گے, ہم آپ کی کشتی پہ نہیں بیٹھیں گے, ایسا وہ تھا ڈوب گیا. پھر تو ہتنوں کو بڑا بیٹا تھا, وہ چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئے وہی بچ جائے, لیکن وہ نہیں تیار ہوا. بعد میں جب طوفان ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے گھر والے سب محفوظ رہیں گے, آپ بیٹا کہہ دیکھو ایسی بات میں کو تمہارا بیٹا اسی لائق تھا اور یہ بات تمہارے کرنے کی نہیں ہے, تو ان کا تو باقی ہم کہیں نہیں بتا دیتے. تو کشتی پر ان کا اللہ تعالیٰ کو کہوں گا کشتی پر تم اپنے سارے آدمی کو بٹھا لو, اور اس کے علاوہ جو جانور ہیں پرندے ہیں اور لوسے ہیں سب میں ایک ایک جوڑا اسے بٹھا لوں. इसलिए अल्लाह ताला का फैसला हुआ कि इस वक्त जो आबादी है दुनिया की उनमें ये फर्क होगा, जो ईमान वाले हैं वही बचेंगे, बाकी सब फना हो जाएंगे। तो जिनको फना नहीं होना है, फना के नहीं किया जाना है, उनको किसलिए बैठा दिया गया ताकि वो बच जाए। और वो तूफान बढ़ता रहा और लोगों को शुरू में तो अंदाजा नहीं हुआ, समझे कि जैसे सैलाब आता आया है, लेकिन बढ़ता चला गया, आखिर में पहाड़ भी बड़े बड़े डूब गए और चोटियां उसकी दिखाई दी। वही लोग किश्ती पर रहे, छिटती रही किश्ती, फिर अल्लाह का हुक्म हुआ और सैलाब घटना शुरू हुआ, घटते घटते पानी खत्म हो गया, तो सब वो खत्म हो गए, लोग जो थे डूब गए और मर गए, और सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके ये लोग बच गए। इसीलिए आता है कि उसके बाद दुनिया की जो कोई आबादी हुई हज़रत नूह के औलाद की आबादी है, हज़रत नूह से ऊपर वालों की कोई आबादी दुनिया में नहीं है, सब हज़रत नूह के ही औलाद हैं। इस तरीके से इंसानों के जो अव्वल जो उनके जद हैं वो आदम अलैहिस्सलाम हैं और बाद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, तो सब हज़रत नूह की औलाद में है। इस वक्त जितने दुनिया में हैं सब हज़रत नूह की औलाद में है, और बाकी लोग हज़रत नूह के सैलाब में सब तबाह हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़ानजैनाह मआहू फ़िल्कुल मशहून, तो हमने उनको नजात दे दी, यानी इस मुसीबत से नजात दे दी। एक मुसीबत ये थी कि मुसलसल वो इसमें अपने को खपाए हुए थे, हर काम पर इस काम को तरजीह देते थे और खुशामद करते थे और बहुत यानी दिल निकाल कर निकालते थे, ये मेहनत थी। इससे पहले कि ख़त्म हो गया इस मेहनत, ये मेहनत ख़त्म हो गई, और दूसरे ये कि उनकी जो हरकतें थी वो मारने के लिए तैयार थे, उससे हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उनको नजात दे दी, और मारू और उनके साथ जो लोग थे उनको नजात दे दी, किश्ती बैठा कर जो किश्ती भर गई थी उनसे बैठने वाले, जाहिर है कि हर एक एक जोड़ा जो उसमें रखेंगे जानवर और परिंदे और ये चौपाए इनको बचाना था ताकि उनकी नस्ल चले। सुम्मा अगरकना बादल बाकी, उसके बाद जो बाकी रह गए थे सबको हमने डुबो दिया, सबको गर्क कर दिया। इन नतीजा के लाया वहाँ खाना सरूमिन, इसमें निशानी है, यानी ये निशानी है इस बात को समझने के लिए कि जब शिर्क और ये नाफरमानी इस हद तक पहुँच जाए कि नबी बददुआ दे दे, तो उसके बाद या नबी की बददुआ के काबिल हो जाए, दाई के बददुआ के काबिल हो जाए, तो फिर उसका अज़ाब आ जाता है। उमा कान अक्सर मोमिनीन, और हमें से अक्सर जो थे वो ईमान वाले नहीं थे, थोड़े ही लोग ईमान लाए थे। वही न रब अलाजीज़ीम, और बेहद तुम्हारा रब जो है वो गालिब है और रहम वाला है। ये गालिब और रहम वाला ये दो बातें अल्लाह ताला फरमाता है, गालिब है कि सब कुछ कर सकता है अल्लाह ताला, हदीस और गलबा है उसका, और रहम वाला है, वो करता नहीं, सिर्फ खास खास मौक़ों पर करता है। उस रहम उसका रहम का जो रहम जो है उसका वो उतना नहीं वो नहीं करता जितना करना चाहिए, यानी ऐसी सी मेहरबानी होती है अल्लाह ताला की, तो फौरन अजाब आ सकता है, फौरन पकड़ हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला जल्दी नहीं पकड़ता, मौका देता है, अब समझ जाओ अब समझ जाओ, बार बार कहा जाता है अब समझ जाओ, और जब आखिरी जब बिल्कुल मायूसी हो जाती है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दूसरी जगह कुरान मजीद में आया है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार अब कोई उम्मीद नहीं रही, अब बात खत्म हो गई, अब इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये दीन को कबूल करेंगे, हर तरह हमने इनको देख लिया जांच लिया, इसलिए अब तो इनका ख़त्म हो जाना ही अच्छा। तो अल्लाह ताला मौका देता है, डील देता है कि जब बिल्कुल पक्की बात हो जाए कि अब ये काबिल सजा है, तब अल्लाह ताला सजा देता है, लेकिन ये समझना कि अल्लाह ताला सजा होगी नहीं, तो अल्लाह ताला मुतवज्जे करता है, देखो ये नबियों किस्से देखो कितने नबी हैं जिनकी कौमों पर अजाब आया, इसलिए समझ लो कि जब बात हद को बढ़ जाती है तो हम फिर सजा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे रहम को, तुम ये समझ लो कि रहम हर हालत में रहेगा, लेकिन जब मायूसी हो जाती है या उम्मीद नहीं रहती तब फिर हम सजा देते हैं, फरमाया कि तुम्हारा रब गालिब है और रहम वाला है, गालिब है कि वो ऐसे मौके पर सजा देगा, और रहम वाला है कि वो इस बहुत रियायत उसने की है, और इतने दिनों से कोशिश हो रही थी और नाकामी हुई, इसलिए अब उसके बाद رحم رحم اللہ تعالیٰ کرتا رہا, اب رحم کا کی حد ختم ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.